ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब ठीक है। हाँ, तो आज हम आपको अपने अनुभव के आधार पर 5-6 बहुत सहज युक्तियां बता रहे हैं, प्रैक्टिकल आपके काम की, जो युक्तियां आपको सदा मालिक पने के अनुभव में रखेंगे। बाबा ने कहा हुआ है, जो अधिकारी है वो अधीन नहीं हो सकता, जो अधीन है वो अधिकारी नहीं हो सकता। तो हम सब सतयुग में अधिकारी बनना चाहते हैं और माया को सदा अधीन करने के लिए कुछ बहुत सहज 5-6 युक्तियां हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। पहली युक्ति ये है, पहली बात ये है, ये सारा जो खेल है ये है प्रकृति का और आत्मा का। प्रकृति मैंने 5 तत्व जिसके अंदर हम हैं, ये शरीर भी हमारा 5 तत्वों का है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं यहाँ ये 5 तत्वों का है, और इसको जीतना है हमने, और जीतने वाला कौन है? आत्मा। अब आत्मा जो है उसमें भी हम सिंपल करने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति को लेंगे, मन के। मन और प्रकृति, इनका आपस में क्या संबंध होना चाहिए? जो मन सदा अधिकारी रहे और प्रकृति सदा सेवक रहे। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा हुआ है, प्रकृति जीते, माया जीते, दुनिया वाले कहते मन जीते, जगत जीत। तो इसलिए अपने आप को हम जीतेंगे, अपने मालिक महसूस करेंगे, स्वयं के, स्वयं की इंद्रियों के, स्वयं के साथ संबंधियों के, सारी दुनिया के तत्वों के, तब हम मालिक बन सकते हैं। तो ज्ञान और योग इसमें मदद करेगा, लेकिन ये 5-6 पॉइंट बड़ी इम्पोर्टेंट है। पहली पॉइंट, इस दुनिया में आप किसी भी चीज के मालिक नहीं बन सकते, इसका प्रयोग कर सकते हैं। दुनिया में आप किसी भी चीज के मालिक नहीं बन सकते, इसका यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है नष्टो मोहा बनने के लिए, निर्लोभी बनने के लिए। लोग ये समझते हैं, मैं, ये मेरी चीज है, ये मेरा घर है, ये मेरा सोना है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, जो भी है इसके हम मालिक हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, कहा जाता है ये दुनिया एक सराय है, एक मुसाफिर खाना है, एक रेल की यात्रा है, ये भक्ति में भी हम कहते थे, इसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी होटल में जाके रहे 5 दिन के लिए, मान लो बॉम्बे में जाके किसी होटल में रहे, तो सचमुच 5 दिन उसका क्या एड्रेस होगा? वही होटल होगा, वही कमरा नंबर होगा, वहां उसको कमरा भी मिलेगा, फोन भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन क्या वो उसका मालिक है? नहीं। आपको भी यहाँ निवास स्थान मिला हुआ है, रहने की जगह मिली हुई है, बिस्तर कुछ भी है, क्या आप उसके मालिक हैं? नहीं। इसी प्रकार से इस सारी दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, आप उसमें से किसी के मालिक नहीं हैं। ठीक। अगर कोई समझते भी है कि ये मकान का मैं मालिक हूँ, इसकी रजिस्ट्री मैंने कराई हुई है कोर्ट में जाके, वो भी धोखा है। क्योंकि अभी ये प्राण निकल जाए तो कौन मालिक, किसकी रजिस्ट्री, वो तो लोग पूछने लग जाएंगे कि कौन इसका वारिस है। तो ये बात नोट करने की है, कभी भी आप कहीं भी जाएं, किसी भी चीज को यूज करें, कि हम इसके मालिक नहीं हैं। और बाबा ने भी ये जो यज्ञ रचा है, इसलिए रचा है, ये सारी प्रवृत्ति जो रची है, दूसरों को ज्ञान दो, सेंटर खोलो, यज्ञ बनाओ, पोस्टर बांटो, ये करो वो करो, ताकि आपके मालिक बनने की फीलिंग आप में ना रहे। ये हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। हम भी लोग भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वस्त्र पहनते हैं, चलते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपना उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। बाबा ने भी कहा हुआ है कि देने में लेना है, ठीक है ना। अब एक बिजली का खंभा सड़क के किनारे आपके घर के सामने लाइट देता है, उसका बिल आप नहीं देते क्योंकि वो सरकारी है, और वही खंभा आपके घर में लाइट देता है, आपने खुद लगाया हुआ है, उसका बिल आप देते हैं। तो कर्म बंधन हमारे ऊपर ना आए किसी भी चीज का, उसका यही तरीका है हर चीज को ट्रस्टीज बन के परमात्मा की समझ कर देन समझ के यूज करना। जो ही आपने मालिक समझा आपके ऊपर उसका खाता चढ़ना शुरू हो जाएगा। यह है पॉइंट नंबर वन, बड़ी सहज पॉइंट है दिमाग में रखने की है। दूसरी, ये दुनिया के जितने भी चीजें हैं तत्वों की बनी हुई, ये स्वयं को खुद यूज नहीं करती, इसको आप यूज करते हैं। ये दूसरी पॉइंट है। जितने भी इस दुनिया में चीजें हैं, जैसे मान लीजिए ये माइक है, ये माइक स्वयं को यूज करने के लिए नहीं है, ये हम लोगों के यूज के लिए है। ये कुर्सी या सोफा या दरी जिस पर आप बैठे हैं, ये दरी अपने को खुद यूज नहीं करेगी, इसको आप यूज करेंगे। दुनिया की जितनी चीजें हैं सब पर ये रूल लागू होता है। सूर्य रोशनी देता है, किसको देता है? खुद को नहीं देता, दूसरों को देता है। ये जो बल्ब जल रहा है ये खुद के लिए नहीं जल रहा है, ये आपके लिए जल रहा है। इसीलिए कहा जाता है नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते। आप ये बात सब चीजों पर लागू करके देख लोगे, आपको यही पता लगेगा ये तत्व आपके सेवक हैं, ये स्वयं के इस्तेमाल के लिए नहीं है, इनकी अपनी कोई वैल्यू भी नहीं है जब तक इनको आप वैल्यू ना दें। मान लो जंगल में एक पेड़ है, उस पे आम लगे, पक भी गए, कोई खाने वाला ही नहीं, वही सूख साख के खत्म हो जाएंगे। पहाड़ पे बर्फ पड़ी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको गर्मी के दिन में कोई बर्फ का टुकड़ा भी दे देगा, उसकी वैल्यू है। इस वास्ते ये तत्वों को वैल्यू हम देते हैं, ठीक है। ये दूसरा असूल है, तत्वों के यूज करने वाले हम हैं, हम इसके मालिक हैं। तीसरा क्या है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि तत्व जो है, ये जितनी प्रकृति की चीजें हैं, ये केवल आपके दुख और सुख को बढ़ा सकते हैं, बस। ये खुद आपको दुखी और सुखी नहीं कर सकते। कैसे? बाबा ने कहा हुआ कि जैसे बीज है, बीज को धरती में डालोगे, इस दुनिया को कहा गया कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो खेत में, क्षेत्र मैंने खेत, इसमें कर्मों का फल, या दुनिया वाले भी किसी फल के बीज को डालते हैं उसको वो बढ़ा देता है, बस। धरती, आपने मिर्ची का बीज डाला तो क्या होगा? बहुत मिर्चियां उग जाएंगी। आम का बीज डाला, बहुत आम उग जाएंगे। इसलिए तत्वों में आपकी खुशी या शांति या प्रेम को बढ़ाने की शक्ति है, देने की शक्ति नहीं है। कई लोग समझते हैं ये तत्वों से हमें शांति मिल जाएगी, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करके प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी से चीजें खरीद लेते हैं, ये खरीद लो, कार खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, ये वो समझते हैं ये चीजें सुख देती हैं। लेकिन ये धोखा इसीलिए खाते हैं कि वो बेसिक रूल को नहीं जानते कि तत्व केवल बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो एक कोई दिन है, आप बहुत उदास हैं, बहुत उदास हैं। कोई बच्चा है फेल हो गया स्कूल में, या कोई व्यक्ति है उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, या किसी के घर में कोई मृत्यु, बहुत उदास है कोई व्यक्ति। अब वो चला बाजार में, चला वहां बैंड बज रहा है, कोई शादी हो रही है, कहीं पार्टी हो रही है, उस वो खुशी की चीज उसकी उदासी को बढ़ाएगी या घटाएगी? वैसे तो बैंड बजने से खुशी आनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति दिल से उदास है उसको खुशी देखकर उदासी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इसीलिए आप देखेंगे जिसके घर में मृत्यु हो जाती है वो दिवाली नहीं मनाता, ऐसे ऐसे होता है ना, सफेद कपड़े पहनता है। तो कारण क्या, इससे क्या सिद्ध हुआ कि दुनिया की चीजें आपके अंदर जो है उसको बढ़ाती है। अगर मिर्ची अंदर है तो मिर्ची को बढ़ाएंगे, गन्ना नहीं पैदा कर सकते। अगर अंदर गन्ना है, गन्ने को बढ़ाएंगे। मान लो एक व्यक्ति बहुत ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है, छोटा सा व्यक्ति है, साधारण सा, थोड़ा सा एरिया है उसका, थोड़े से लोग जानते हैं, उसकी ईमानदारी उतने एरिया में चलती है। आप उसको देश का प्रेसिडेंट बना दीजिए, प्राइम मिनिस्टर, अब उसकी ईमानदारी ज्यादा लोगों में चलेगी तो बढ़ गया ना। अगर वो बेईमान है, पहले उसका बीज बेईमान है, थोड़े से एरिया में गड़बड़ करता है, उसको आप प्राइम मिनिस्टर बना दोगे तो ज्यादा एरिया में गड़बड़ करेगा। इस वास्ते बेसिक असूल क्या है कि तत्व केवल आपकी आंतरिक शक्तियों को, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो विकारी है, चाहे वो निर्विकारी है, चाहे वो आश्रय या दैवी है, उसको बढ़ाते हैं। इससे सबक क्या मिलता है? इससे सबक ये मिलता है कि इससे पहले कि हम तत्वों को अंधाधुंध इकट्ठा करना शुरू करें, पैसा इकट्ठा करो, ये करो, पद पाओ, रिश्तेदार ढूंढो, ये करो, ऊंचे बनो, कोई फायदा नहीं। आप जाके देख लो, सब रो रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो अमीर लोग तो सब खुशी होने चाहिए थे और गरीब लोग सब रोते होने चाहिए थे। ऐसा भी नहीं है। अमीरों को दिन में भी नींद आ जानी चाहिए थी, उनको तो रात को भी नहीं आती। गरीबों को सारी रात नींद, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने समझा कि तत्वों से ही हमें खुशी मिलती है। तत्व केवल खुशी के निमित्त कारण है और गम के भी निमित्त कारण है। सबसे नजदीक की बात ये बॉडी है। ये बॉडी आपको सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है। ठीक है, जब आप ठीक ठाक है बॉडी सुख देती है, जब आपको कोई सजा मिलनी होती है किसी कर्म की तो यही बॉडी दुख देनी शुरू कर देती है। आपका बेटा है, बेटे कई सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। लेनदार हैं तो दुख देते हैं, देनदार है तो सुख देते हैं। किसी के घर में बहू आ जाती है, कमाई बढ़ जाती, कहते लक्ष्मी आ गई। किसी घर में बहू आ जाए, कोई मर जाए, कहते ये तो बड़ी अभागन है। ऐसा देखते हैं ना लोग, कहते हैं। इसी प्रकार से ये तत्व केवल निमित्त है। इसलिए इसका सबक ये है कि जब तक हम अपने अंदर की जो क्वालिटी है, आत्मा के अंदर जो गुण है या अवगुण है, अवगुणों को निकालते नहीं, गुणों को तत्वों में यूज नहीं करते, आपको सुख नहीं मिल सकता। अवगुण उसको डिस्टर्ब कर देंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा फल हो, अंदर से काणा हो, बहुत बड़ी सब्जी हो, अंदर से कीड़ा हो, तो यूजलेस। इसी प्रकार से जब तक हम अपने अंदर के आत्मा रूपी बीज के अंदर के संस्कारों को ठीक नहीं करते, आप इस दुनिया में सुखी नहीं रह सकते। यही इस ज्ञान का महत्व है। कई लोग कहते हैं इस ज्ञान की क्या जरूरत है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ तो है, सुख शांति है, स्थायी सुख शांति है, नहीं है तो यही तो सब कुछ चाहिए। इसलिए तीसरा असूल ये है। चौथा असूल क्या है? चौथा असूल ये है कि केवल मात्र तत्वों के बढ़ने से, वस्तुओं के, चीजों के बढ़ने से आपको सुख नहीं मिल सकता, आपको अपने कर्मों की पूंजी से सुख मिलता है। और दुख भी केवल तत्वों के जाने से नहीं मिलता, आपको अपने कर्मों की, गलत कर्मों की बोझ से मिलता है। वो कैसे? मान लो एक व्यक्ति करोड़पति है, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत बड़ी कार है, बहुत धन है, अमीर होना, खुश सुखी होना चाहिए, लेकिन उसको डायबिटीज की बीमारी है। होती है, अमीरा को ज्यादा बीमारी होती है, हार्ट की, डायबिटीज की, ये वो। अच्छा, अब क्या हुआ? उसके ड्राइवर उसकी कार को ले गया एक बंगाली रसगुल्ले की दुकान के आगे, और ड्राइवर ने जाके एक दर्जन रसगुल्ले खाने शुरू किए लेकर, और वो पीछे बैठा है, करोड़पति है, सारी दुकान खरीद सकता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा अगर जिंदा रहना है तो बॉइल्ड वेजिटेबल खाना और कुछ नहीं खाना। अच्छा, अब बताओ उस समय खुशकिस्मत कौन है, ड्राइवर या वो? उसके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन क्या फायदा, और दुखी हो रहा है। देखो मेरा ड्राइवर है, ये मौज कर रहा है और मैं। अच्छा, इसलिए तत्वों के सिर्फ रखने से आप देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति के पास कर्मों की पूंजी नहीं है तो उसके घर में सब कुछ होते हुए भी नरक जैसा घर होगा। कोई फसाद पैदा हो जाएगा, बहु बेटे में लड़ाई हो जाएगी, जितने बिजनेस फैमिलीज इंडिया में हैं बड़ी बड़ी, सबके मुकदमे चल रहे हैं, आप देख लो जाके। तो इसलिए अगर आप कोर्ट में जाके देखोगे जितने केसेस चल रहे हैं, जितने सब दुनिया भर की कोर्ट में, या काम के वश, या क्रोध के वश, या लोभ के वश, या मोह के वश, या अहंकार के वश, इसके आउटसाइड कोई केस ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इसलिए बाबा ने कहा हुआ है, पहली बात कि बच्चे आत्मा के संस्कारों को ठीक करो, दूसरी बात कि दुनिया के तत्वों को इकट्ठा, मैं तुम्हें स्वर्ग में बहुत धन दूंगा, यहाँ क्यों नहीं देता? कहते बाबा आप तो ईश्वर हो, स्वर्ग में तो दोगे दोगे, यहीं दे दो। अगर वो यहीं दे दे तो बाबा की कई साकार मुरलियां चली हुई हैं कि जब लड़ाई का जमाना होता है, जब खतरे का जमाना होता है, तो छोटे राजा बड़े राजा के पास अपना धन संपत्ति सेफ रख देते हैं कि उसके बाद ले लेंगे। इसी प्रकार से बाबा हम लोगों का तन मन धन सेफ रखने के लिए अपने पास रखता है और उसका बहुत गुना करके दे देता है। अगर यहाँ दे भी दे, अगर हम में से सबको बाबा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दे या जो भी सेठ बना दे, आप तब भी उतने दुखी रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि तत्वों को इकट्ठा करने से पहले तत्वों के सतोगुणी उपभोग की शक्ति होनी चाहिए। वो शक्ति हम लोग धारण कर रहे हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। इस ज्ञान में भी आप देख सकते हैं, अज्ञान में भी देख सकते हैं, सारी हिस्ट्री में देख सकते हैं। केवल तत्वों को प्रदर्श करने वाले सुखी नहीं है, तत्वों को कम तत्व होते हुए भी अब उपभोग की शक्ति रखने वाले सुखी हैं। अब किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसको शूट कर दिया, उसके घर वाले क्या कहेंगे, इससे तो अच्छा तो ना बनता, जिंदा तो रहता, क्या फायदा हुआ। कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई बहुत बड़ा बन गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गए, क्या फायदा हुआ। इसलिए बाबा कहता है, ये सब बातें सिखाती है कि पहले शक्ति धारण करो, फिर तत्वों को यूज करो। तो सतयुग में तत्व भी सतोगुणी है, आपके पास अपने भाग्य का पूंजी है श्रेष्ठ कर्मों की, इसलिए आप सुखी रहते हैं। यहाँ पर किसी के पास टेम्परेरी सुख है भी, तो उसके आगे दुख लिखाई हुआ है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, सब ब्राह्मणों के मस्तिष्क पर लिखा विजय और सब अज्ञानियों के मस्तिष्क पर लिखा विनाश, तो समझ जाना चाहिए। अच्छा, तो तत्वों के भाग्य का सुख दुख का आधार श्रेष्ठ कर्म है, ना कि तत्वों का होना। जब तक श्रेष्ठ कर्म नहीं है, बीच में मिक्सचर है, तो दुख होना जरूरी होगा ही होगा। अच्छा, अब आगे चलो, ये जितनी प्रकृति है, इसको अगर आप नीचे रख के दास बना के मालिक बन के उपभोग करोगे, ये आपको कभी परेशान नहीं करोगी। और अगर कभी प्रकृति ने आपको आपकी मालिक बन गई, जैसे कि घोड़ा सवार के ऊपर चढ़ गया, तो आप दुखी हो जाओगे। तब बाबा ने कहा हुआ है कि साधनों का यूज करो, लेकिन साधना को मत भूलो। अभी ये सैटेलाइट भी लगा है, तो बाबा ने उस दिन ये कहा, बहुत अच्छी इन्वेंशन है, लेकिन साथ ये कह दिया कि बच्चे साधनों के साथ साथ साधनों को नहीं भूलना। हमेशा बाबा ये वार्निंग देते थे, आगे किसी की मर्जी, उसको समझे ना समझे। तो साधनों को भी अपने, बाबा कहते हैं जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो अपने पैसे को फालतू नहीं रखता, उसको इन्वेस्ट करता रहता है अच्छे कमाई के लिए। तो साधनों को भी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा साधन है, किसी के पास केवल यही ज्ञान है, लोग कहते हैं कि अगले जन्म में आप सुई भी नहीं ले जा सकते, लेकिन ये ज्ञान क्या कहता है, आप अगले जन्म में अपने अखबारों की रद्दी भी ले जा सकते हैं, सुई तो छोड़ो, क्योंकि किसी भी चीज को आप यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ज्ञान ऐसा है, आपके पास शक्ति है, आपके पास धन है, आपके पास कुछ भी है, उसको आप बाबा के काम में इन्वेस्ट करके उसका बहुत गुना आगे प्राप्त कर सकते हैं और शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है, जब अर्क बनाया जाता है या कोई असेंस निकाला जाता है, तो यहाँ पर उस मैटर को गर्म किया जाता है, उसकी भाप बनाई जाती है, आगे जाके उसको ठंडा किया जाता है, तो प्योर इम्प्योरिटी खत्म हो जाती है। एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि विकारों को अंदर आने के लिए तो भी विकारों की भट्टी जलती है, और विकारों को निकालने के लिए योग की भट्टी जलती है, क्योंकि आग के द्वारा ही अलॉय सोने में मिलाई जाती है और आग के द्वारा ही अलॉय सोने से निकाली जाती है। इसी प्रकार से ये बहुत अच्छी युक्ति है कि आपके पास जितना एक्स्ट्रा है, बाबा कहते हैं कम से कम अपने यूज में लगाकर उसको आप ईश्वरीय कार्य में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ से उड़ जाएगा, आपको लगेगा नहीं कहाँ गया, लेकिन वहां आपको प्योरीफाई होकर मिल जाएगा। इसके ऊपर एक कहानी भी है, अच्छा, इसके ऊपर एक कहानी भी है कि एक बारी राजस्थान में बहुत बड़ा कहत पड़ गया, कुछ यहाँ उगा नहीं, तो एक व्यक्ति था वो मरने लगा, गाय भैंस उसके खत्म हो गए, थोड़ा बहुत पैसा था, उसका एक दोस्त आसाम में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वहां चला गया। उसने कहा दोस्त ने, अच्छा ये करो, तुम ये पैसा दे दो, इसकी हम बीज ला के ना बो देते। उसने कहा बीज बोने से क्या होगा। उसने कहा ठहरो। अगले दिन उसने शंशे में आकर बीज बो दिए, तो खोद के देखने लगा तो बीज फूल गए, कहता ये तो खत्म हो रहा मेरा पैसा ही। उसने कहा थोड़ा धैर्य रखो। कुछ दिन बाद घास जैसी कोई चीज उग गई, कहता लो मेरा तो बीज भी गया घास उग गया। उसने कहा और धैर्य रखो। धीरे धीरे जब वो फसल उगी तो उसने कहा हाँ अब कुछ प्राप्ति हुई। तो कई बाबा के बच्चों को ये पता नहीं है कि बाबा इनोसेंटली हमसे कैसे हमारा भाग्य बनवाने की युक्ति रचता है, जिसको लोग सुदामा के चावल आदि कहते हैं। तो हमको इसकी गहराई को जानकर अपनी एक्स्ट्रा शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने से आपका भाग्य बहुत बन सकता है। यहाँ पर साधनों को सदा सेवक बनाकर रखेंगे, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। ओम शांति।